नमस्कार भारत, तारीख 24 जुलाई, दिन सोमवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जॉर्डन में इसराइली दूतावास में गोलीबारी की घटना, एक व्यक्ति की मौत। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति कार्यकाल के खत्म होने पर संसद को किया कल संबोधित।
इट विल बी विद अ टिंज ऑफ सैडनेस एंड अ रेनबो ऑफ मेमोरीज दैट आई विल बी लिविंग दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग।
नहीं चला भारतीय टीम का जादू, वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड से हारी।
आपने जीता हुआ मैच दे दिया, वहीं पे आप क्रेडिट दूसरी तरफ देंगे इंग्लैंड को। अपनी बॉलिंग उन्होंने बिल्कुल स्टंप स्टंप डाली है बॉल, हालांकि वाइड गई है, कुछ मिस फील्डिंग भी हुई है, तो एक बहुत ही निराशा होगी।
कार्यक्रम में आप सुनेंगे वुसतुल्लाह खां की डायरी और अखबार की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसराइली दूतावास में हुई गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हुए हैं। ये ऐसे समय हुआ है जब यरूशलम में धार्मिक स्थल के पास दो इसराइली पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद लागू किए गए नए नियमों का भारी विरोध हो रहा है। फलस्तीनी नए नियमों के तहत लागू किए गए मेटल डिक्टेटर गेटों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच इसराइल ने धर्मस्थल के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस में दोनों पक्षों की सहमति से पारित हुए विधेयक का समर्थन करता है। इस विधेयक के तहत प्रतिबंध नीति में ढील देने के ट्रंप के अधिकार में कटौती भी शामिल है। इसके अनुसार इस विधेयक को वीटो करने का संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को हासिल नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा कि इस विधेयक को लाने में राष्ट्रपति का योगदान रहा है।
The administration is supportive of being tough on Russia, particularly in putting these sanctions.
रूस पर प्रतिबंध को और कड़ा करने के मामले में प्रशासन मददगार रहा है। विधेयक का मूल प्रस्ताव हड़बड़ी में लिखा गया था, लेकिन व्हाइट हाउस और सीनेट के बीच बातचीत के बाद कुछ बदलाव किए गए जो जरूरी थे। हम इस कानून का समर्थन करते हैं। जब तक यूक्रेन के हालात पर पूरी तरह संभल नहीं जाते, हम रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रखने के लिए सीनेट के साथ मिलकर काम करेंगे। ये थे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव सारा हकाबी सैंडर्स के शब्द। पुलिस ने अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसके ट्रक में बंद 8 लोग मरे पाए गए थे, इनमें से 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा ट्रक में 28 लोग अर्ध बेहोशी की हालत में पाए गए। ट्रक को एक पार्किंग में खड़ा किया गया था जिसमें लोग बिना हवा और पानी के बंदोबस्त के बंद थे। पुलिस का मानना है कि ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। मामला तब प्रकाश में आया जब पास के एक सुपरमार्केट से सूचना मिली। हमें वॉलमार्ट के एक कर्मचारी का फोन आया जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की चेकिंग करने गया था। अचानक ट्रक से एक व्यक्ति निकला, उसने पानी मांगा। कर्मचारी ने पानी पिलाने के बाद पुलिस को फोन किया। हम मौके पर पहुंचे और ट्रक के पीछे 8 लोगों के शव बरामद किए। ये थे स्थानीय पुलिस प्रमुख विलियम मैकमैनस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दवान खाड़ी देशों के दौरे के तहत सऊदी अरब पहुंचे हैं। यहां वो कतर और पड़ोसी मुल्कों के बीच विवाद को सुलझाने में मदद करने की कोशिश करेंगे। इस विवाद में तुर्की ने कतर का पक्ष लिया था और अर्दवान ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की थी। एचआईवी पर पेरिस में हो रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं का कहना है कि अगर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप फंड में कटौती पर अमल करते हैं तो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एचआईवी को नियंत्रित करने के लिए सरकारों की ओर से मिलने वाले फंड में अमेरिका का हिस्सा करीब 2/3 होता है। इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी के प्रमुख ने कहा कि फंड में कटौती तब और घातक हो सकती है जब और अधिक लोगों को इलाज की जरूरत है। बीबीसी ने माना है कि वेतन में स्त्री पुरुष भेदभाव को लेकर उसे बहुत कुछ करने की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि पूरे संस्थान में पुरुषों का औसत वेतन महिलाओं की तुलना में 10% अधिक है। बीबीसी ने कहा है कि 2020 तक वो इस अंतर को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के राजस्थान प्रांत की पुलिस ने कहा है कि उसने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जिस पर एक तेल क्षेत्र से 5 करोड़ लीटर कच्चा तेल तस्करी करने का आरोप है। इस गैंग को पकड़ने के लिए गोपनीय तरीके से 6 साल तक जांच अभियान चलाया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में संदीप राय से सुना कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसराइली दूतावास पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। गोलीबारी की घटना दूतावास परिसर में हुई, इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इमारत को सील कर दिया। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इमारत में काम कर रहे दो कारपेंटरों पर संदेह है कि वो इस घटना में शामिल थे। एक स्थानीय निवासी जाकरिया अशोर ने बताया,
كنا واقفين عند السوبر ماركت اللي على باب السفارة بحكم انه احنا ساكنين بالمنطقة فدائما نيجي نوقف هون
ہم لوگ اسی علاقے میں رہتے ہیں میں اور میرے دوست دوتاواس کے گیٹ کے پاس استھت ایک سپر مارکیٹ میں تھے اسی سمے ہم نے ایمبولینس کی آواز سنی جب ہم گیٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ دوتاواس کا بیریئر بند تھا اور وہاں جارڈن کے سرکشا بل کے جوان گھائل ملے ہمیں بتایا گیا کہ فرنیچر لے جانے کے لیے ایک آدمی پک اپ ٹرک سے آیا تھا اس کے پاس ہتھیار تھا मौके का फायदा उठाते हुए उसने फायर किए और सुरक्षा चौकी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये थे एक स्थानीय निवासी जाकरिया अशोर के शब्द। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब यरूशलम में स्थित मुस्लिम और यहूदियों के पवित्र धर्म स्थल पर इसराइल ने सुरक्षा के नए नियम लागू किए हैं, जिसका फलस्तीनी विरोध कर रहे हैं। नए नियम पवित्र धर्म स्थल के पास दो इसराइली पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद लागू किए गए। शुक्रवार को इसके विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान फलस्तीनी नागरिकों और इसराइली सुरक्षा बलों के जवानों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 फलस्तीनी नागरिक मारे गए थे। शुक्रवार को अम्मान की सड़कों पर भी हजारों लोगों ने नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में मेटल डिटेक्टर का विरोध कर रहे हैं। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पहले ही इसराइल के साथ सभी आधिकारिक रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि शनिवार को इसराइल की ओर से समाधान तलाशने को लेकर नरमी के संकेत दिए गए थे, लेकिन रविवार को धर्मस्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। स्थानीय लोग इसे मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकारों में दखल मान रहे हैं। पूर्वी यरूशलम में रहने वाले आयात अबू लिब्दा ने मेटल डिटेक्टर वाले गेटों को लेकर कहा,
दिस इज ए वेरी सेंसिटिव सिचुएशन हियर। From here,
ये गेट हमारे धार्मिक क्रियाकलापों पर असर डाल रहे हैं, उन्हें इसे हटा लेना चाहिए क्योंकि ये पवित्र स्थल है। हम वहाँ खुदा की इबादत करने जाते हैं, वहाँ कोई गेट नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ मन मर्जी से जाने और इबादत करने की इजाज़त होनी चाहिए और ये सभी मुस्लिमों के लिए खुला होना चाहिए। ये थे पूर्वी यरूशलम के स्थानीय निवासी आयात अबू लिब्दा के शब्द। बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को स्वीडन, फ्रांस और जॉर्डन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की अपील की है। ये जगह मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। मुसलमान इसे हरम अल शरीफ और यहूदी इसे टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई यानी कि कल समाप्त हो रहा है। इसके बाद उनकी जगह रामनाथ कोविंद लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सांसद राष्ट्राध्यक्ष प्रणब मुखर्जी को विदाई देने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में कल इकट्ठे हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, विपक्षी पार्टियों के नेता इस दौरान मौजूद थे। 22 जुलाई 1969 को प्रणब मुखर्जी ने पहला राज्यसभा सत्र अटेंड किया था। संसद में 37 साल का उनका सफर 13वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद खत्म हुआ। कल प्रणब मुखर्जी ने अपने विदाई भाषण में क्या कुछ कहा, सुनिए मानसी दास की इस रिपोर्ट में।
It will be with a tinge of sadness and a rainbow of memories.
मैं यादों के इंद्रधनुष के साथ इस भव्य राष्ट्रपति भवन से बाहर जाऊंगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि मुझे अपने कार्यकाल के दौरान इस महान देश के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द। करीब 5 दशक लंबे अपने राजनीतिक सफर में प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा में रहे। वो देश के वित्त मंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी रहे। इस सफर के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ काम किया और बाद में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। अपने विदाई भाषण में प्रणब मुखर्जी ने एक नेता के तौर पर अपने सफर को याद किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने उनके करियर को दिशा दी। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक निडर नेता बताया और आपातकाल के बारे में इंदिरा गांधी से पूछे गए सवालों का जिक्र किया।
I remember after the defeat of Congress and herself in the post-emergency election.
आपातकाल के बाद हुए चुनावों में हार के बाद हम लंदन गए थे. वहाँ कई पत्रकार मौजूद थे जो श्रीमती गांधी से कड़े सवाल पूछना चाहते थे. उन्होंने सवाल किया, आपातकाल से आपको क्या हासिल हुआ? पत्रकार को उनकी आंखों में देखते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, हमने उन 21 महीनों में देश के सभी तबकों को एक साथ किया. इस उत्तर के बाद एयरपोर्ट के लाउंज में खामोशी छा गई. इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं किया. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द. कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाने वाले प्रणब मुखर्जी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण चर्चा में रहे. 2017 में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने प्रणब मुखर्जी को अपने पिता समान बताया.
मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणव दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली. एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे. देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा. मुझे दा कहते, प्रणव दा कहते, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो.
अपने विदाई भाषण में प्रणब मुखर्जी ने मोदी के साथ अपने संबंधों का जिक्र भी किया और कहा कि उनके प्रति विनम्र व्यवहार के लिए वो हमेशा मोदी को याद रखेंगे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश के प्रशासन और संसद में प्रणब मुखर्जी के योगदान की चर्चा की.
He once famously remarked, and I quote, Democracy should comprise of 3 D's.
मुझे याद है उन्होंने एक बार कहा था, गणतंत्र के लिए 3 D जरूरी होने चाहिए, डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन, यानी बहस, असहमति जताने और फैसला लेने की जगह. लेकिन इसमें चौथा डी, डिसरप्शन, यानी हंगामा कभी नहीं होना चाहिए. आज के मुश्किल दौर में उनकी ये बात बेहद अहम है. मंगलवार को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे.
हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से और पूछा कि प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं.
13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और 12 राष्ट्रपति जो रहे उनमें सबने कोई ना कोई एक नई नजीर कायम की, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर कुछ अपनी राय रखी. तो प्रणब मुखर्जी ने उस तरह से एक बड़े टेक्स्ट बुक स्टाइल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन शायद चाहता होगा कि उन्होंने सिर्फ अपने काम से काम रखा और सरकार के काम में कोई उस तरीके की दखल अंदाजी नहीं करी, कोई नई नजीर नहीं कायम की.
प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी नेता हैं जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति बने और फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी वे राष्ट्रपति रहे. तो ऐसे में उनका तालमेल कैसा रहा?
देखिए, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों सरकारों से, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार से और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार से, बहुत अच्छा तालमेल निभाया और इसमें उन्हें पूरे 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं यदि हमें उनको मार्क्स देने हो. लेकिन हमें ये देखना होगा कि भारत के संविधान में या भारत की जो राजनीति है या भारत की जनता की राष्ट्रपति पद से क्या उम्मीदें और आशाएं होती हैं. तो राष्ट्रपति जो है वो एक कोई सरकार का कोई नॉमिनी नहीं होता, वो एक ऐसा होता है जो सरकार और संसद और इन सबसे ऊंचा होता है और उससे कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जनता को या एक वर्ग को कुछ ऐसी उम्मीदें होती हैं. जैसे राष्ट्रपति के आर नारायणन थे तो उन्होंने जो था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको पत्र लिख के इस बात का ध्यान दिलाया कि भाई क्यों ना जुडिशरी में जो है जो कमजोर तबके होते हैं, जो दलित जिन्हें हम कहते हैं, दलितों का भी रिजर्वेशन होना चाहिए. वो हुआ नहीं, लेकिन देश में एक चर्चा हुई. तो एक उन्होंने एक बात सामने रखी. और इसी तरीके से जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे तो उस समय आप जानती हैं कि वहाँ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विध्वंस हुआ. तो उस विध्वंस पे उन्होंने कहा कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है. तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ, एक मैसेज गया कि देश का जो प्रथम नागरिक है वो तमाम इन मामलों में संवेदनशील है. कैसा कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो है ये ऐसे रहे कि जो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी हो सकते थे जो भारत को नहीं मिल पाए. तो उस अगर हम उसमें देखें तो हमें लगता है कि वो बहुत सी चीजें कह सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अपने आप को एक तरीके से ढाल रखा है और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग करा. कोई भी बिल हो, कोई भी मामला हो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागने का, बड़े अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां भारत का राष्ट्रपति एक अपनी राय रख सकता था लेकिन उन्होंने वो राय नहीं रखी.
वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई विश्लेषण कर रहे थे प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का. और अब कार्यक्रम में यहीं पर अखबारों का जिक्र कर लेते हैं. संदीप जी अखबार पढ़ चुके हैं. संदीप, प्रणब मुखर्जी जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ अखबारों में उनके जाते हुए चित्र हैं, उसके अलावा बहुत सारी खबरें भी हैं।
जी, प्रणब मुखर्जी के विदाई समारोह को लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर या जगह दी है। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि मुखर्जी ने अपने विदाई समारोह में कहा है कि विधेयक के जरिए कानून बनाना अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रणब मुखर्जी की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हर अखबारों में है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है
जी।
कि किस तरह से भारतीय जो महिला टीम है वो पहुँचते पहुँचते पदक मतलब खिताब जीतते जीतते चूक गई।
बिल्कुल, 9 रनों से भारतीय टीम चूक गई। आज के लगभग सभी अखबारों में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हारने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है।
और यहीं पर हम श्रोताओं को बता दें कि इस की जो रिपोर्ट है हम बस सुनवाने ही वाले हैं
जी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि आरएसएस से जुड़े संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख दीनानाथ बत्रा ने एनसीईआरटी को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी, उर्दू, अरबी के शब्द हटाने की मांग की है। दैनिक हिंदुस्तान की एक खबर के अनुसार लड़कियों का विषय समझे जाने वाले गृह विज्ञान को स्कूलों में लड़कों के लिए अनिवार्य बनाने की तैयारी चल रही है।
वाह, क्या बात है।
और इस संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मसौदे को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भी भेज दिया है। नवभारत टाइम्स की एक खबर के अनुसार एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने कहा है कि पाकिस्तान को 1971 की जंग को याद रखना चाहिए।
आजकल लोग युद्ध बड़े याद रखते हैं
जी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर कहा है कि तिरुपति मंदिर को 8 करोड़ रुपए के पुराने नोट लौटाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है जिसमें कहा गया है कि खाड़ी देशों में जाने वाले भारतीयों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, इस कारण भारत भेजे जाने वाले धन में भी कमी आई है
जी।
खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को इसका कारण बताया गया है। मीडिया में और भी खबरें हैं जिसमें एक खबर है कि हरियाणा के सिरसा में बेटे की उम्मीद में कथित तौर पर एक दादी ने अपनी पोती के गुप्तांग जला दिए हैं।
हालांकि ये कल की खबर है लेकिन कुछ अखबारों ने
जी हाँ, लेकिन आज कल एक जो उसमें ताज़ा जानकारी है कि 55 साल की इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
है।
इसके अलावा दैनिक भास्कर में एक खबर है कि संसद की एक समिति ने ट्रांसजेंडर्स को भी विवाह और बच्चा गोद लेने के अधिकार की वकालत की है।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप राय अखबारों की सुर्खियां पढ़ने के लिए। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कि भारतीय रेल में सफर न किया हो और इसमें मिलने वाले खाना को न खाया हो। इस बार रेल में मिलने वाले हेल्दी और एंटी बैक्टीरियल खाने पर ही है वो सतुल्ला खां की डायरी, आप भी सुनिए।
भारतीय रेलवे की 80 ट्रेनों और 74 रेलवे स्टेशनों पर किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट से पता चला है कि रेल यात्रियों को जो खाना मिलता है वो अक्सर पुराना और बासी होता है, लिहाजा ये खाना मुसाफिरों की सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसी फिजूल रिपोर्टों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ना खाना पकाने वालों को ना खाने वालों को। लगातार अच्छा खाना शरीर को हानिकारक कीटाणुओं से लड़ने के काबिल नहीं रहने देता। भोजन जितना बासी या सड़ा हुआ होगा उतना ही एंटीबायोटिक होगा। अब आप यही देखिए कि लगभग 90 वर्ष पहले एक स्कॉटिश डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगर अपनी लेबॉरेटरी में डबल रोटी का छोटा सा टुकड़ा ना भूल जाते और इस टुकड़े पे कुछ दिनों में फफूंद ना लग जाती और इस फफूंद से आसपास के बैक्टीरियाज मरने ना शुरू हो जाते तो डॉक्टर फ्लेमिंग को इस फफूंद से पेंसिलिन बनाने का ख्याल ना आता और फिर पेंसिलिन से एंटीबायोटिक का इनकलाब ना आता और करोड़ों लोग आज भी 100 वर्ष पहले की तरह मामूली नज़ले ज़ुकाम से मरते रहते। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि बासी या फफूंद लगा खाना एंटीबायोटिक होने के कारण भगवान का प्रसाद समझिए। अब आप यही देखिए कि जब यूरोप और अमेरिका से NRIs या NRPs दिल्ली या लाहौर आते हैं तो कुछ पीते या खाते ही पेट पकड़ के शौचालय की ओर दौड़ते हैं, मगर हम लोग यहाँ इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए कुछ भी खा पी लें, हमारा पेट कोई नखरा ही नहीं करता, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। खाना एंटीबायोटिक बनाने के लिए बासी करने या सड़ाने की भी ज़रूरत नहीं, ताज़ा खाने को भी कीटाणु दुश्मन बनाया जा सकता है। کبھی آپ نے سوچا کہ یورپ اور امریکہ میں کسی بھی ریسٹورنٹ کا کچن پچھلے حصے میں کیوں ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں جتنے بھی ریسٹورنٹ اور ڈھابے ہیں ان میں کچن سڑک کی طرف ہوتا ہے اور بیٹھنے کا انتظام پیچھے کی طرف؟ کیونکہ ہم سب کا ماننا ہے کہ سڑک سے اڑنے والی جتنی مٹی اور جانوروں کی لید وغیرہ پکے ہوئے کھانے پہ پڑے گی وہ کھانا اتنا ہی اینٹی بایوٹک ہوگا اور اس کھانے سے ہمارا شریر ایک بار بیمار ہونے کے بعد بار بار بیمار نہیں ہوگا۔ اس وقت بازار میں جتنا بوتل بند پانی بک رہا ہے، گھی اور کھانے کے تیل کا جو جو برانڈ ہے، سڑک کے کنارے یا دفتر کی کینٹین یا ریلوے کی ڈائننگ کار یا ہاسٹل کی کینٹین میں جو جو پک رہا ہے، ان میں سے اکثر کے بارے میں ہمارے سائنٹیفک ادارے اور سروے کرنے والے کتنی آسانی سے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسانوں کے استعمال کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بتائیے، انڈیا کی جن سنکھیا پچھلے 70 ورش میں 40 کروڑ سے 1 ارب 30 کروڑ اور پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ سے 20 کروڑ تک کیسے پہنچتی؟ جاپان کی آبادی آخر کیوں نہیں بڑھتی؟ جب میں پہلی بار دلی یاترا کو آیا تو میں نے ایک کھٹارا ٹرک دیکھا جس سے کالا دھواں نکل رہا تھا اور اس کے پیچھے لکھا تھا یو تو نوئی چلے گا۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کھاؤ پیو اور کوئی چنتا نہ کرو، اگر کچھ ہانیکارک ہے تو وہ لوگ جو ہمارے کھان پان کو صحت دشمن بتاتے رہتے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لو، یو تو نوئی چلے گا۔
وسعت اللہ خان کی ڈائری آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیے گا۔ کارکرم میں اب بات کرتے ہیں کھیل کی۔ انگلینڈ نے مہیلا کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کو 9 رن سے ہرا کر خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ پہلے کھیلتے ہوئے انگلینڈ نے نردھارت 50 اووروں میں 7 وکٹ کے نقصان پر 228 رن بنائے تھے، جواب میں بھارت کی پوری ٹیم 219 رن پر سمٹ گئی۔ کہاں بھارت 43 اوور میں 3 وکٹ پر 191 رن کے ساتھ جیت کی اور بڑھ رہا تھا، لیکن 219 تک آتے آتے پوری ٹیم کی سانسیں پھول گئیں اور بھارت 9 رن سے میچ و ورلڈ کپ گنوا بیٹھا۔ سنیے اس میچ کی کہانی آدیش کمار گپت سے۔
کرکٹ کے مکہ لارڈز میں آخرکار میزبان انگلینڈ کی مہیلا کرکٹ ٹیم نے بھارتی مہیلا ٹیم کو 9 رن سے ہرا کر کل ICC مہیلا وشو کپ کرکٹ ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ بھارتی ٹیم کے سامنے جیت کے لیے 229 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن اس کی پوری پاری 48.4 اوور میں 219 رن پر سمٹ گئی، وہ بھی تب جب ایک سمے اس کا اسکور 4 وکٹ کھو کر 191 رن تھا۔ تب تک انگلینڈ کی ٹیم کی سانس گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ سلامی بلے باز پونم راؤت 86 رن بنا کر 4th وکٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے سمرتی مندھانا بنا کوئی رن بنائے اور ہرمن پریت کور 51 رن بنا کر پیویلین لوٹ چکی تھی۔ کپتان متالی راج 17 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیول ویدا کرشنا مورتی نے 35 اور دیپتی شرما نے 14 رن بنا کر کچھ سنگھرش کیا۔ انگلینڈ کی شربھ سولے نے کمال کی گیند بازی کرتے ہوئے 46 رن دے کر 6 وکٹ جھٹکے، وہ فائنل کی پلیئر آف دا میچ رہی۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نردھارت 50 اوور میں 7 وکٹ کھو کر 228 رن بنائے۔ نتالی اسکوئر نے 51 اور سارا ٹیلر نے 45 رنوں کا یوگدان دیا۔ بھارتی ٹیم کی اس ہار کو لے کر کرکٹ سمیکشک وجے لوکپلی کہتے ہیں،
اسی سچویشن سے آپ نے جیتا ہوا میچ دے دیا، وہیں پہ آپ کریڈٹ دوسری طرف دیں گے انگلینڈ کو، انہوں نے اپنا سیم نہیں کھویا، اپنی بالنگ انہوں نے بالکل سٹمپ سٹمپ ڈالی ہے، بال حالانکہ وائڈ گئی ہیں، کچھ مس فیلڈنگز بھی ہوئی ہیں، ایک کیچ چھوٹ گیا، تو ایک بہت ہی نراشا ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا پڑے گا انڈین ٹیم کو۔
تو بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کا وشو کپ جیتنے کا سپنا ٹوٹا، وہ بھی دوسری بار۔ اس سے پہلے وہ سال 2005 میں کھیلے گئے وشو کپ فائنل میں آسٹریلیا سے ہاری تھی۔
تو اس طرح سے مہیلا کرکٹ میں انگلینڈ نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ اور اب ساپتاہک کارکرم کھیل اور کھلاڑی آدیش کمار گپت سے۔
کھیل اور کھلاڑی کارکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ اس وقت میں شامل ہے بھارتی ٹیم کا شری لنکا دورہ اور سمیکشا बीसीसीआई में राहुल द्रविड़ और जहीर खान को लेकर चल रही खींचतान की। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे में 3 टेस्ट मैच, 5 एकदिवसीय और 1 मात्र 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच गॉल में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले भारत को श्रीलंका बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलने का अवसर मिला। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने श्रीलंकाई बोर्ड अध्यक्ष एकादश केवल 187 रन बना सकी। हालांकि सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुणतिलकन ने 74 और कप्तान लाहिरू थिरिमन्ने ने 59 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया। भारत के कुलदीप यादव ने केवल 14 रन देकर 4 और रविंद्र जडेजा ने 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 54, कप्तान विराट कोहली ने 53, अजिंक्य रहाणे ने 40, रोहित शर्मा ने 38 और शिखर धवन ने 41 रन बनाकर बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। भारत ने अपनी पारी 9 विकेट पर 312 रन बनाकर समाप्त घोषित की। मैच का नतीजा तो खैर क्या निकलता, लेकिन टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका की आबो हवा भापने का अवसर भारतीय टीम को मिल गया। और अब समीक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के नाम पर राहुल द्रविड़ और जहीर खान की नियुक्ति को लेकर उहापोह की और एन श्रीनिवासन के दोबारा बीसीसीआई में सेंध लगाने पर। पहले तो पिछले हफ्ते रवि शास्त्री को चीफ कोच बनाने के साथ साथ जहीर खान को गेंदबाजी और राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया। बाद में रवि शास्त्री की पसंद मानी गई और भरत अरुण, संजय बांगर कोचिंग स्टाफ से जुड़ गए। अब ताजा समाचार है कि प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय ने कहा है कि राहुल द्रविड़ विदेशी दौरों पर उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जहीर खान के अनुबंध संबंधी मुद्दों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे मसले के परिणाम हैरान करने वाले हैं। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
बहुत शर्मनाक सिचुएशन है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं जहीर खान और राहुल द्रविड़ की, जो लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना मेरे ख्याल से सही नहीं था। मैं ये भी मानता हूँ कि जो कोच बनाए गए हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि अपना सपोर्ट स्टाफ खुद ढूंढे। ये बताता है किस तरह से इंडियन क्रिकेट का हाल है।
उधर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन उनसे पहले के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और बीसीसीआई से जुड़े पूर्व पदाधिकारी निरंजन शाह को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि वो क्यों बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में शामिल हुए। अयास मेमन कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट को कड़ी निंदा करनी पड़ी श्रीनिवासन की और निरंजन शाह की कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन किस हद तक रोक सकते हैं, अगर केस पे केस चलता रहे और ये मामला सिर्फ लीगल इश्यू में बना रहे ना कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो नुकसान हो रहा है इंडियन क्रिकेट का।
ऐसा लगता है कि बीसीसीआई से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेना मुश्किल नहीं बल्कि एक पहेली है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। और अब बात हॉकी की। जोहानिसबर्ग में खेले गए महिला हॉकी वर्ल्ड लीग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हालत बेहद खराब रही। वो 10 टीमों के बीच अपने अंतिम मैच में आयरलैंड से 2-1 से हारकर 8वें स्थान पर रही। वैसे फाइनल अमेरिका ने जीता जिसमें उसने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
इस कार्यक्रम को आपने सुन लिया और यहीं पर हम आपको बता दें कि महिला विश्व कप में भारतीय टीम हार गई, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से छाई, bbchindi.com की इस खबर को पढ़ने के लिए पन्ने पर आइए जिसमें कि आप जान पाएंगे कि सचिन, सहवाग और सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक और खबर कि समुद्री लहरों को किस तरह से प्लास्टिक मलबा रोकता है, इस खबर को भी आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसराइली दूतावास में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस में दोनों पक्षों की सहमति से पारित हुए विधेयक का समर्थन करता है। पुलिस ने अमरीका के टेक्सास प्रांत में एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसके ट्रक में बंद 8 लोग मरे पाए गए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दवान खाड़ी देशों के दौरे के तहत आज सऊदी अरब पहुंचे हैं। हेल्थ कार्यकर्ताओं ने आगाह किया है कि अगर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप फंड में कटौती पर अमल करते हैं तो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बीबीसी ने माना है कि वेतन में स्त्री पुरुष भेदभाव को लेकर उसे और बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। चाहे खेल हो, राजनीति हो या कोई खबर, bbchindi.com पर आपके लिए उपलब्ध है। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।